हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम का वक्त था, ऑफिस से लगभग सभी कर्मचारी जा चुके थे। धृति भी माधुरी के साथ घर चली गई थी। अपने केबिन में बैठा अर्णव आज होटल में जो हुआ था उसके बारे में गहराई से सोच रहा था। कुछ तो छुपा रही हो तुम मुझसे। जिस धृति की बात उसने की वो तुमसे बिल्कुल जुदा थी। तुमने मुझे बताया था कि तुमने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनी है, पर आज उस लड़के ने जो कहा वो तुम्हारी बात से बिल्कुल उलट था। और जब मैंने यही सवाल तुमसे पूछा तो जवाब देने के बजाय तुम मुझसे नजरें चुराने लगीं। जो तुमने मुझे वजह बताई वो ठीक हो ही नहीं सकती। मैंने देखा था, जब लड़के को देखकर तुम्हारी आंखों में जो भाव थे उससे साफ जाहिर था कि तुम उसे जानती नहीं थीं। उसके गले लगने पर तुम घबराकर पीछे हटी थीं। जब तक वो रहा तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी घबराहट और डर के भाव मौजूद थे। मैं गलत नहीं हो सकता, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, पर मैं भी पता लगा कर रहूंगा कि आखिर तुम मुझसे छुपा क्या रही हो। अर्णव यही सब सोच रहा था जब उसके केबिन का दरवाज़ा खुला और कबीर ने केबिन में कदम रखा। अर्णव, तू अभी तक यहीं है? आज घर नहीं जाना क्या तुझे? अर्णव के कानों में कबीर के शब्द पड़े तब कहीं जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने निगाहें घुमाकर कबीर को देखा, फिर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, बस जा ही रहा था। अर्णव अपना लैपटॉप बैग में डालने लगा। अब भी उसके दिमाग में धृति का ख्याल घूम रहा था और चेहरे पर तनाव के भाव मौजूद थे जो कबीर की निगाहों से भी नहीं छुप सके। क्या हुआ अर्णव, आज तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? मीटिंग तो ठीक से हो गई थी ना? कबीर का सवाल सुनकर अर्णव ने निगाहें घुमाकर उसे देखा, फिर इनकार में सर हिलाते हुए बोला, मीटिंग तो आज हुई ही नहीं। मिस्टर बख्शी किसी फैमिली इमरजेंसी के कारण आ नहीं सके और उन्होंने अंतिम समय पर मीटिंग रद्द कर दी। तो क्या हुआ, मीटिंग दोबारा हो जाएगी? इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है? मैं मीटिंग के कारण परेशान नहीं हूँ। अर्णव का जवाब सुनकर कबीर ने चौंकते हुए सवाल किया, फिर तो इतना परेशान क्यों लग रहा है? आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने मुझे सोच में डाल दिया है। ऐसा क्या हुआ वहाँ जिसने तुझे इतना परेशान कर दिया है? आज होटल में हमारी मुलाकात एक लड़के से हुई। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और वो खुद को धृति का सबसे अच्छा दोस्त कह रहा था, पर धृति की आंखों में उस लड़के के लिए अजनबीपन देखा मैंने, जैसे वो उसे जानती ही ना हो। जबकि वो लड़का धृति से जिस तरह बात कर रहा था, लग रहा था जैसे दोनों काफी करीब हैं। उससे बात करते हुए धृति के चेहरे पर अजीब सा डर और घबराहट के भाव नजर आ रहे थे, जैसे उसका कोई गुनाह पकड़े जाने का डर सता रहा हो उसे। कुछ और भी बातें हुईं जिससे मुझे शक हुआ कि वो जिस धृति की बात कर रहा था वो धृति नहीं थी। जब मैंने धृति से उस लड़के के बारे में कुछ सवाल किए तो वो काफी घबरा गई थी। आज उसका व्यवहार बहुत अजीब था, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जो जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जैसे धृति कुछ छुपा रही है मुझसे, कुछ ऐसा जो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते दिनों कुछ और चीज़ें ऐसी हुईं जिससे मुझे शक होने लगा है कि जिस धृति के बारे में आकाश ने लिखा था वो ये धृति नहीं है। मुझे पता है तुझे मैं पागल लग रहा हूँगा, पर मुझे लग रहा है जैसे एक ही नाम और शक्ल के बावजूद दोनों लड़कियों में जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे वो धृति कोई और है, इस धृति का उन सब से कोई लेना देना नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है। सब बहुत उलट सा गया है और जितना मैं इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब उतना ही उलझता जा रहा है। अर्णव सब बताते हुए भी खुद में पूरी तरह से उलझा हुआ लग रहा था। कबीर ने बड़े ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर गहराई से सब बातों के बारे में सोचते हुए बोला, कहीं तूने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया अपनी नफरत की आग में जलाने के लिए? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाश ने धृति अवस्थी नाम ही लिखा था। धृति उसी कॉलेज से पास हुई है, आकाश की ही क्लास में थी ये। शक्ल भी वही, नाम भी वही, सब वही है, पर दोनों इंसानों में बहुत फर्क है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे एक भ्रमजाल बिछा है जिसमें मैं उलझता जा रहा हूँ। सब छलावा सा लग रहा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि धृति के बारे में सब जान सकूँ, इस उलझी पहेली को सुलझा सकूँ और उसके बाद फैसला करूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। अर्नस्ट सब बताते हुए भी खुद में पूरी तरह से उलझा हुआ लग रहा था। कबीर ने बड़े ही ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर गहराई से सब बातों के बारे में सोचते हुए बोला, कहीं तूने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया अपनी नफरत की आग में जलाने के लिए? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। आकाश ने धृति अवस्थी नाम ही लिखा था। धृति उसी कॉलेज से पास हुई है, आकाश की ही क्लास में थी ये। शक्ल भी वही, नाम भी वही, सब वही है, पर दोनों इंसानों में बहुत फर्क है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे एक भ्रमजाल बिछा है जिसमें मैं उलझता जा रहा हूँ। सब छलावा सा लग रहा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा, पर कोशिश कर रहा हूँ कि धृति के बारे में सब जान सकूँ, इस उलझी पहेली को सुलझा सकूँ और उसके बाद फैसला करूँ कि क्या सच है और क्या झूठ। अर्नव काफी परेशान और उलझा हुआ लग रहा था। कबीर ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और गंभीरता से बोला, अर्नव, इस बार कोई जल्दबाजी मत कर। अच्छे से सब पता करवाने के बाद ही कोई भी फैसला लेना। पहले ही तू बहुत कुछ ऐसा कर चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए जब तक धृति गुनाहगार साबित नहीं हो जाती, उसके साथ और कुछ गलत मत करना। अगर तू गलत निकला तो जो तू अब तक उसके साथ करता आया है वो बहुत गलत होगा, और शायद तेरी इन गलतियों के लिए तुझे कभी माफ़ी भी न मिले, इसलिए आगे और कोई गलती मत करना। अर्नव ने सहमति में सर हिला दिया और फिर दोनों ऑफिस से निकल गए। सारे रास्ते अर्नव कबीर की बातों और धृति के बारे में सोचता रहा। घर पहुंचा तो धृति किचन में थी। डिनर के वक्त भी दोनों खामोश रहे और अपने अपने सोच में गुम रहे। धृति जहां डिनर के बाद किचन में चली गई ताकि अर्नव का सामना न करना पड़े और उसे फिर से उन सवालों से न जूझना पड़े, वहीं अर्नव स्टडी रूम में चला आया। उसने स्टडी रूम के टेबल के दराज को खोला तो उसमें एक डायरी रखी थी। अर्नव ने डायरी बाहर निकाली और जैसे ही पहला पन्ना खोला, उसकी निगाहें वहां लिखे शब्दों पर पड़ीं। सॉरी भाई, आपने मुझे कितना समझाया था कि मैं बहुत सीधा हूँ, मेरा दिल साफ है, तो मैं सामने वाले को भी अच्छा ही समझता हूँ, पर दुनिया इतनी सीधी और अच्छी नहीं है। यहाँ लोग बहुत चालाक हैं, वे बस अपना फायदा देखते हैं और अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बच कर रहूं। पर मैंने आपकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। आपने मुझे कहा था कि इंडिया न आऊं, वहीं आप सबके बीच रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूं, पर मैंने तब भी आपकी नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ा रहा। आप सबके लाख मना करने के बाद भी फैशन डिजाइनिंग सीखने इंडिया आया। मैंने पूरी कोशिश की थी भाई कि बस अपने सपने पर ध्यान दूं, बाकी बेकार की बातों में ना उलझूं। आपने मुझे कहा था कि पहले अपना करियर बनाओ, फिर प्यार मोहब्बत के बारे में सोचना, और मैंने भी फैसला कर लिया था कि पहले कुछ बन जाऊंगा, उसके बाद ही किसी से प्यार करूंगा, पर मैं खुद से किया वादा ही नहीं निभा सका और प्यार नहीं, झूठे प्यार के जाल में फंस गया। पहले पन्ने पर बस इतना ही लिखा था, पर उन शब्दों को पढ़कर अर्नव की आंखें नम हो गई थीं। उसने पन्ना पलटा और अगले पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। धृति नाम है उसका, धृति अवस्थी, कॉलेज क्वीन है वो। कॉलेज के लड़के तो उस पर फिदा हैं ही, लड़कियां भी उसे बहुत एडमायर करती हैं। सच में हुस्न की मल्लिका है वो। इतनी खूबसूरत है कि किसी की भी नजरें ठहर जाएं उस पर। कॉलेज में सब लड़कियों से कहीं ज्यादा हसीन, फैशनेबल, स्टाइलिश, बोल्ड है वो। जब उसने पहले दिन कॉलेज में कदम रखा था तो सबकी नजरें उस पर ठहर गई थीं। कातिलाना अदाएं हैं उसकी जो किसी को भी अपना दीवाना बना लें। हमारी पहली मुलाकात क्लास इंट्रो के दौरान हुई थी। जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मेरी नजरों ने भी उस पर से हटने से इनकार कर दिया था। शायद उसके हुस्न का जादू चल गया था और मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया था। पर आपकी बात याद थी मुझे, इसलिए मैंने उस आकर्षण को प्यार में बदलने की इजाज़त नहीं दी थी और उससे जितना हो सके दूर ही रहता था। बात करता तो बस काम की। मैंने तो उससे दूरी बना ली थी, पर वो हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करती रहती थी। वो काफ़ी मिलनसार और मजाकिया स्वभाव की थी। पूरी क्लास उसकी दोस्त थी। सबसे बात करना, हंसी मजाक करना उसके व्यक्तित्व का हिस्सा था। उस वक्त मुझे लगता था कि मैं उससे दूर दूर रहता था, इसलिए वो मुझसे बात करने की कोशिश करती थी ताकि मुझसे भी दोस्ती कर सके। मुझे उसका स्वभाव भी बहुत पसंद था। शुरू के 6 महीने यूं ही बीत गए थे। मैंने पूरी कोशिश की थी उससे दूरी बनाकर रख सकूं, अपने दिल में उसके लिए एहसास न पनपने दूं, और कुछ हद तक कामयाब भी रहा। पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में घर आया था, तब तक सब ठीक था। छुट्टियों के खत्म होने के बाद जब मैं लौटकर वापस मुंबई आया तो एयरपोर्ट से अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए रास्ते में मुझे कुछ आवारा लड़के दिखे जो किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। मुझे ये सब थोड़ा अजीब लगा। वे आवारा लड़के कहीं उस लड़की के साथ कुछ गलत ना कर दें, यही सोचकर मैंने बीच में आने का फैसला किया ताकि उस लड़की की मदद कर सकूं। जब मैंने आगे बढ़कर देखा तो लड़की को देखकर दंग रह गया। वो लड़की कोई और नहीं धृति थी, जो पूरी तरह नशे में धुत थी। मैंने उन लड़कों से धृति को बचाया। हमारे बीच हाथापाई हुई। वक्त पर पुलिस के आने से सब आवारा लड़के भाग गए। धृति की हालत देखते हुए मैंने उसे पुलिस के हवाले करना ठीक नहीं समझा और उससे उसके घर का बता पूछा ताकि उसे छोड़ आ सकूं। पर धृति नशे में थी, उसे खुद का ही होश नहीं था। उसके पास ऐसा कोई दस्तावेज भी नहीं था जिससे मुझे उसके घर का पता चले। फोन भी नहीं था उसके पास जो उसकी फैमिली को सूचित कर पाता। आखिर में और कोई रास्ता न देखकर मैं उसे अपने साथ फ्लैट पर ले गया। उस दिन नशे में धृति ने मेरे करीब आने की कोशिश की और मेरे रोकने पर अपने प्यार का इजहार किया। उस रात हम पहली बार एक दूसरे के करीब आए और मेरी पहली चुंबन धृति के साथ हुई। उस रात के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। धृति खुलेआम बेझिझक मेरे करीब आती, अपना प्यार जाहिर करती, बार बार मुझे अपने साथ रिश्ते में आने को कहती। उसकी बातों और व्यवहार से मुझे विश्वास हो गया था कि वो मुझे सच में बहुत प्यार करती है। तभी तो सारे कॉलेज के लड़के उसके पीछे पागल हैं और वो दीवानी बनी मेरे आगे पीछे घूमती है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उसके झूठे प्यार को सच समझ लिया। शुरू में तो मैं उससे दूरी बनाता रहा, पर उसकी लगातार की जाने वाली कोशिशों के आगे मैं हार गया। बहुत कोशिश की मैंने खुद को रोकने की, पर उसके तरह झुकने से खुद को रोक न सका। शुरू में जो आकर्षण था वो वक्त के साथ प्यार में बदल गया और मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई, वो भी बेपनाह। हम एक दूसरे को डेट करने लगे। धृति के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। वो वक्त मेरी जिंदगी में सबसे खुशनुमा वक्त में से था जिसमें मैं धृति के साथ बहुत खुश था और प्यार के खूबसूरत रंगों से मेरी जिंदगी सजने लगी थी। सब बहुत अच्छा था। हम घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते, कॉलेज और कॉलेज के बाद ढेर सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते, कभी घूमने जाते तो कभी पब जाकर मस्ती करते। धृति की हर ख्वाहिश पूरी करता था मैं, वो भी बहुत खुश रहती थी मेरे साथ। हमारा रिश्ता अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। धृति बेखौफ मुझ पर अपना हक जताती, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं भी अपना प्यार जाहिर करने लगा था। पूरे कॉलेज में हमारी जोड़ी मशहूर थी और सब मुझसे जलते थे कि धृति, जिस पर पूरे कॉलेज का क्रश है, वो मेरे साथ है। अगले 2 साल कब गुजरे एहसास ही नहीं हुआ। तब तक सब अच्छा चल रहा था, पर उसके बाद हमारी क्लास में आया रॉकी रंधावा, कॉलेज ट्रस्टी का भांजा। उसकी पर्सनालिटी से लेकर लुक्स तक सब कमाल थे। कॉलेज में एंट्री के साथ वो लड़कियों का प्रिंस चार्मिंग बन गया। क्लास में वो नया था तो धृति को उसका पार्टनर बना दिया गया और इसके बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। धृति, जिसका पूरा वक्त और ध्यान पहले मुझे मिलता था, अब वो बटने लगा था। धृति सबके तरह रॉकी से भी खुलकर बात करती। शुरू में तो वो मुझ पर भी ध्यान देती थी, पर फिर जैसे जैसे रॉकी और उसके बीच नज़दीकी आई, मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। कॉलेज में सारा वक्त वो रॉकी के साथ रहती। फ़ोन करता तब भी 2-4 बातें करके बहाने से फ़ोन काट देती और घंटों घंटों रॉकी से उसकी बातें होती। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। माना रॉकी उसका दोस्त था, पर मुझसे वो प्यार करती थी तो थोड़ा वक्त तो उसके पास मेरे लिए भी होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं था। ना उसे मुझसे प्यार था और ना ही उसके पास मेरे लिए वक्त। उसके लिए मैं बस एक जीता जागता खिलौना था। जब तक मन किया मेरे साथ खेला और जब मन भर गया उसे अपने लिए मुझसे बेहतर दूसरा खिलौना मिल गया तो उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। उस वक्त मैं ये सब नहीं जानता था। मुझे बहुत बुरा लगता था। पहले तो मैं कोशिश करता रहा कि धृति मुझ पर ध्यान दे, हमारा रिश्ता सुधरे, पर जब मुझसे और बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने उससे बात करने की कोशिश की और ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे आज भी याद है वो दिन जब रॉकी कॉलेज से जल्दी चला गया था। कॉलेज से छुट्टी के वक्त मैंने धृति से हमारे बारे में साफ साफ शब्दों में बात करने का फैसला किया ताकि जान सकूं कि वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है, क्या चाहती है वो। और यही निर्णय करके कॉलेज के बाद जब वो घर के लिए निकल रही थी तो मैं उसके पास चला गया।